to Acts 28.
और बाइबल के प्रेरितों के 28वें अध्याय में हम देखते हैं.
If you want a title for this sermon, it's called The Unfinished Story.
और अगर इसका शीर्षक आप जानना चाहते हैं तो जो कहानी अधूरी है.
And following some of the prophetic words this morning, I want to put it in that context, okay?
और आज जो भविष्यवाणी आई उसके संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा.
The fact that God's got plans to prosper us,
और बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो.
Is all about this unfinished story.
और ये जो अधूरी कहानी है उसके बारे में है.
It's not just about God wanting to prosper an individual.
और परमेश्वर इस प्रकार से नहीं कह रहा है कि हाँ हर एक व्यक्ति उसको प्रगति करना है.
It's not that he wants to prosper a family, a single family.
या ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परिवार को वो उन्नति देना चाहता है.
God wants to prosper his people.
और परमेश्वर अपने लोगों को उन्नति देना चाहता
है. In his plans.
और उसके योजना में.
And our success is as we get involved in his plans.
और हमारी जो कामयाबी है वो जैसे हम उसके कार्य में लग जाते हैं.
And I want to read just a short passage from Acts 28.
और प्रेरितों के 28वें अध्याय से मैं एक छोटा सा परिच्छेद पढ़ने वाला हूँ.
Paul is in prison.
पौलुस जेल में है.
And he's been accused by some Jews back in Caesarea.
और सीज़रिया के यहूदी है, उन्होंने उस पर कुछ दोष लगाया है.
Because he's a Roman citizen.
और क्योंकि वो रोम का रहने वाला है.
He appeals to Rome.
He
appeals to Rome.
और वो रोम को इस प्रकार से ऐलान करता है.
He wants to go to Rome to have his case heard.
और वो रोम में जाना चाहता है ताकि उसका न्याय हो.
And he's now in Rome in this particular chapter.
और अभी यहाँ पर रोम देश में है वो.
He's waiting for a hearing with Caesar.
और वो सीजर जो वहाँ का मुख्य है उससे न्याय सुनना चाहता है.
He's under house arrest.
और उसे पकड़ा गया है.
He's probably chained to a guard.
और शायद उसके सुरक्षा के लोग वहाँ पर हैं.
He may be in some prison that wouldn't be the kind of prisons that we understand.
और जिस तरीके से हम जेल को समझते हैं वैसी यह जेल नहीं है.
And he's free to meet with people.
और वो लोगों को मिल सकता है.
So he's in prison. There are no visiting times, but people can come visit him.
और वहाँ पर मिलने का समय ऐसा नहीं है, लेकिन लोग आकर मिल सकते हैं.
And in chapter 28, the end of chapter 28, we find him meeting some of the local Jewish people.
और 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय यहूदी लोग हैं, वो उनको मिलते हैं.
And typical of Paul, he's still preaching the gospel.
और पॉल का स्वभाव को लेकर वो हमेशा सुसमाचार बांटना चाहता है.
And in verse 23 it says this: when the Jews in Rome, when they had appointed a day for him, I'll read it all, yeah. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in great numbers. From morning till evening he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and the prophets. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had one statement. Paul said, the Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, go to this people and say, you will indeed hear, but never understand. And you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull. And with their ears they can barely hear, and their eyes have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. Speaking about people like me and you. He lived there 2 whole years at his own expense, in prison the whole time, by the way. And welcomed all who came to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Is that right? From verse
23. का 28 अध्याय और 23 वचन से आगे. तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा. तब कुछ ने उनको उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपने आंखें बंद की है, ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। 28वां वचन, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने वह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।
Let me pray for us. Father, we thank you for your word.
पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए।
What a privilege it is, Lord, to
और इतना सौभाग्य है प्रभु
have all your revelation.
और सारे तेरे प्रकटीकरण को पाना।
Everything you wanted us to know about you.
और तू तेरे बारे में जो कुछ हमें सिखाना चाहता है।
Everything you wanted us to know about your plans.
और तेरी योजना के बारे में तू जो हमें बताना चाहता है।
Written down for us.
और हमारे लिए वहां लिखा है प्रभु।
So that we can read them.
ताकि हम उसे पढ़ सकें।
And that as we do that,
और जैसे हम वो करते हैं,
you can work in our lives.
और तू हमारे जीवन में कार्य कर।
You can shape us.
और तू हमें आकार दे।
To be the people that you want us to be.
और जैसे तू हमें बनाना चाहता है वैसे।
And right now,
और अभी,
we just want to say, please.
और हम कहते हैं कृपा करके।
Send the Holy Spirit to us.
पवित्र आत्मा हम पर उंडेल।
Come thrill our hearts.
और हमारे हृदयों में आने दे।
The things that you're still to do.
और जो बातें तू और करने वाला है।
Shape us, Lord.
और हमें आकार दे।
Shape us through this word, Lord.
और इस वचन के द्वारा हमें आकार दे।
Shape our lives.
और हमारे जीवन को आकार दे।
Shape husbands and wives.
और पति और पत्नियों को आकार दे।
Mums and dads.
और मम्मी और डैडी को आकार दे।
Children.
और बच्चों को परमेश्वर।
Shape us, Lord, please.
और हमें आकार दे कृपा करके।
Amen.
Amen.
As most of you know, Luke wrote. We have 2 documents from the doctor called Luke.
और हमारे पास 2 ऐसे खत है जो डॉक्टर से है, डॉक्टर लुक।
We have his gospel,
और उसका सुसमाचार है।
We have the acts of the apostles,
और जो प्रेरितों के काम वो लिखे है वो भी उसने लिखे।
And really it's 2 halves of the same story.
और सही में कहूँ तो वो 2 कहानी के 2 भाग है।
The gospel is that Luke's record of Jesus' life.
और सुसमाचार की किताब में यीशु के जीवन के बारे में लिखा है।
And then when he writes the second book, the Acts of the Apostles.
और जब वो दूसरा किताब लिखता है प्रेरितों के काम।
He tells us it's going to be a continuation of the second book, of the first book.
और लूक वहाँ हमें समझाता है कि वो जो पहले का किताब है उससे आगे की ये बातें हैं।
And this is the end of it.
और यह अंत का भाग है।
But it's not a very good story.
लेकिन यह इतनी अच्छी कहानी नहीं है।
Because I've got lots of questions.
और बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर।
What happened to Paul?
पौलुस का क्या होगा?
What happened next?
आगे क्या होने वाला है?
We leave Paul in prison.
और हम देखते हैं पौलुस यहाँ कैद में है।
He's still chained to the guard.
और वहाँ वो सुरक्षा के लोग हैं वहाँ पर आसपास में।
He's still seeing people.
और अभी वो लोगों को मिल भी रहा है।
Don't you want to know more? I want to know what happened to Paul.
और मैं जानना चाहता हूँ पौलुस का हो क्या गया?
We're not told.
और हमें नहीं बताया है
उसके बारे में। We're not told whether he ever reached Spain.
और हमें पता नहीं कि वो स्पेन देश में पहुंच गया भी या नहीं।
We know that from one of his letters he wanted to get to Spain. We're not told whether he gets there.
और एक खत में उसने लिखा था कि उसे स्पेन में जाना था, लेकिन पता नहीं पड़ता है इससे कि वो गया।
We're not told of how far the gospel gets in that part of the world. We don't know those things.
और उस देश में सुसमाचार फैलता है या नहीं उसके बारे में हमें नहीं पता।
And I want to say it's very deliberate.
और मैं आपको बताऊं यह जानबूझकर ऐसा है।
Because Luke wants us to understand this is an unfinished story.
और लूका इस प्रकार से हमें समझाना चाहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुई ऐसी कहानी है।
We are to get to the end of this writing of Luke and say what goes next.
और लूका के अंत में जाकर हम ढूंढना चाहते क्या होगी आगे।
Because you see Acts chapter 28 is still being written today.
क्योंकि प्रेरितों का 28वां अध्याय अभी भी लिखा जा रहा है.
If you're a believer,
अगर आप विश्वासी हैं,
you're still writing Acts chapter 28.
आप खुद उसको लिख रहे हो प्रेरितों का 28वां
अध्याय. We're part of this unfinished story of God.
और इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर की अभी पूरी हुई नहीं ऐसी कहानी.
One day it's going to be finished.
और एक दिन वो पूरी होने वाली है.
But right now it's an unfinished story.
लेकिन अब ये अधूरी है.
And you and I have a part to play in.
और आप और मेरा उसमें किरदार है.
And so when we read from Jeremiah that God's got plans to prosper us.
और जैसे हमने सुना कि यिर्मयाह हमें कि परमेश्वर हमें उन्नति पर लेना चाहता
है. We must understand.
हमें समझना है.
If you're truly going to understand that passage of scripture from Jeremiah.
और वो यिर्मयाह से उस परिच्छेद को हमें अच्छे से समझना है.
We must understand.
आपको जरूरी है.
It's not for your personal prosperity.
और वो तुम्हारी व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए नहीं है.
So that God's plans can prosper in you.
और वो इसलिए कि परमेश्वर की योजना आप में उन्नत हो. और हम बहुत समय ये वचन लेते हैं, वादे लेते हैं, और वो हम अपने लिए उसे पकड़ कर रखते
हैं. हाँ,
ऐसा भी है, वो हमारे जीवन के लिए है भी.
But it's in the context of God's unfinished work.
लेकिन वो है परमेश्वर का जो कार्य अभी पूरा होना है उसको लेकर है.
So I want to appeal to you today.
और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ,
these words were for you,
अगर ये शब्द अगर आपके लिए होते,
it's not just so that you can have a better job or a better home,
तो ऐसा नहीं कि आपको अच्छी नौकरी मिले या अच्छा घर मिले,
you can have a happier life,
या आप आनंदित जीवन बिताए,
so that you, along with the rest of us, can finish this story.
और वो इसलिए है कि तुम बाकी सभीयों के साथ परमेश्वर की इस कहानी को पूरा कर सके.
That we can continue to do the things that God has begun to do.
और परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए कहा है वो हम लगातार करते रहे.
And this is when God began it.
और यहाँ पर समझो परमेश्वर ने शुरू किया है.
Genesis 1 verse 1 says, "In the beginning God."
और उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहले वचन में लिखा है शुरुआत में परमेश्वर.
We're continuing that story.
और हम वो कहानी को आगे लेकर जा रहे हैं.
In fact, Ephesians tells us it was a story that began even before then.
और इफिसियों में तो लिखा है कि वो तो उसके ये कहानी तो उसके पहले से शुरू हुई है.
Because we're told that God was working in eternity before creation.
और सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर अनंत काल से काम में है.
Working out a plan. Working out a plan.
और वो हमारे लिए जो योजना है उस पर वो कार्य कर रहा
है. His name will be glorified in the whole, all of creation.
और सारे सृष्टि में फिर वहाँ उसे महिमा मिलेगी.
So I want to just say seven things to you this morning.
और सात बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ.
Don't directly come from this passage.
और यह इस परिच्छेद से आती है.
But do track through the Acts, this whole book.
और प्रेरितों का अध्याय का पूरा जो किताब है उस पर आप ध्यान देना.
Don't worry, won't be here for long, I promise you.
और मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा.
But I want to track through because there are some significant things in the Acts of the Apostles.
लेकिन हम उसे देखना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो पौलुस हमें बताता है.
Continue until the story is finished.
और वो लगातार होते रहेगी जब तक ये कहानी पूरी होती है.
This is not a different story.
और यह अलग कहानी नहीं है.
And like all good stories, it's an unfolding story.
और जैसे हर अच्छी कहानी, जैसे कहानी बढ़ते जाती है, खुलते जाती है.
Unfold as we go along.
और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम उसको आगे क्या होता है वो समझ पाएंगे.
And the first thing is this.
और पहली बात ये है.
The gospel is powerful to change lives and communities.
और सुसमाचार ऐसा है जो हमारे समाज को और हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है.
Wherever you look in the Acts of the Apostles, you'll see the gospel changing individual lives and changing communities.
और कहीं भर आप प्रेरितों के अध्याय में देखते हो सुसमाचार को लेकर वो व्यक्तिगत जीवन बदलता है और समाज के लोगों का जीवन बदलता है.
Acts chapter 1 opens.
और प्रेरितों का अध्याय एक वहां से शुरुआत होती है.
Jesus telling his disciples to wait in Jerusalem.
और यीशु अपने चेलों को कहता है आप यरूशलेम में रुके रहो.
Because the Holy Spirit's going to come upon them.
क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर आने वाला है.
And they will have power to be his witnesses.
और उन्हें सामर्थ्य मिलेगा उसके गवाह बनने के लिए.
In Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the earth.
और यरूशलेम, जुड़िया, समेरिया और पृथ्वी के छोर तक.
And that's what happens.
और वही होता है.
Peter stands up on the day of Pentecost and preaches 3,000 get saved.
और पतरस खड़ा होता है, प्रचार करता है, 3,000 लोग वहां वहां उद्धार पाते हैं.
By the time we get to Acts chapter 8,
और जब तक हम 8वें अध्याय में पहुंचते
हैं, when we're told that Stephen is stoned to death,
और वहां पर हमें पता चलता है कि स्टीफनस को पत्थरों से मारा जाता है.
It is likely that over half of the population of Jerusalem were believers.
और वहां तक करीबन आधे लोग हैं यरूशलेम के वो विश्वासी बन गए हैं.
As a result of the persecution,
और वो सताव की वजह से,
the believers are scattered,
और विश्वासी है वो यहाँ वहाँ बिखेर गए हैं.
What do they do when they're scattered?
जब वो बिखर गए तब उन्होंने क्या किया?
Wherever they go, they tell people about Jesus.
जहाँ कहीं वे गए वहाँ उन्होंने यीशु के बारे में बताया.
And more people are added into God's plan.
और परमेश्वर के राज्य में और अधिक लोग
जुड़ गए. We're told of Paul's conversion.
और हम फिर देखते हैं पौलुस का उद्धार.
And what is he called to do?
और फिर उसको क्या करना है?
He's told to take the gospel to the Gentiles.
और उसे बताया गया है कि अन्य जातियों में उसके सुसमाचार लेके जाना है.
What we see is him going from community to community, changing them.
और फिर वो एक समाज से दूसरे समाज में उनको बदलते हुए जा रहा है.
In the power of the gospel.
और सुसमाचार के सामर्थ्य में.
He goes to Thessalonica.
और फिर वो थेसलोनिका में जाता है.
And people there say about him. He doesn't say this about himself. They say this about him.
और वो अपने बारे में ऐसा नहीं कहता, लेकिन लोग उसके बारे में इस प्रकार से कहते हैं.
These people, Paul and his team, these people have come here.
और ये लोग यहाँ आ गए हैं.
They're turning the world upside down.
और वो पूरी दुनिया को उल्टा कर रहे हैं.
The world needs to be turned upside down.
हाँ, दुनिया को उल्टा होना आवश्यक है.
And they're doing it by the gospel.
और वो कर रहे हैं सुसमाचार के द्वारा.
And this gospel needs to continue to be preached.
और यह सुसमाचार अभी भी फैलाना है, बांटना है.
Gurmeet on Friday reminded us that this gospel will be preached to all nations and then the end will come.
और गुरमीत ने हमें याद दिलाया इस बात की कि यह सुसमाचार सारी जगहों में बांटा जाएगा और फिर तब अंत आएगा.
We're in that part of the story.
और हम उसी भाग में है कहानी के.
Where the gospel still needs to be preached.
और ऐसा कि सुसमाचार अभी भी बांटना चाहिए.
And then the end will come.
और तब अंत आएगा.
Secondly,
दूसरी
what we बात, find throughout the Acts of the Apostles,
और वेदों के अध्याय से हमें ये बात देखने को मिलती
है, the local church is at the heart of God's plan.
और जो स्थानीय कलीसिया है वो परमेश्वर के हृदय के करीब है.
The local church is God's plan A.
और स्थानीय कलीसिया है यह परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण एक ही मकसद है.
And there is no plan B.
और दूसरा कोई योजना नहीं है, दूसरा कोई प्लान नहीं है.
There's no plan B.
और दूसरा बी प्लान या दूसरा प्लान नहीं है.
वन नेशन चर्च,
वन नेशन कलीसिया,
दिस इज गॉड्स प्लान ए.
और यह परमेश्वर का मुख्य प्लान ए है.
नॉट संडे मॉर्निंग मीटिंग्स बाय द वे.
और सिर्फ रविवार की सभा नहीं.
बिकॉज संडे मॉर्निंग मीटिंग्स कैन हैव टेक्नोलॉजी दैट ऑल गोस फनी, ए.
और संडे मॉर्निंग को हम तैयारी करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी हमें धोखा देती है. हाँ या नहीं?
दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लान ए, बट इट्स नॉट प्लान ए.
और हाँ, एक भाग है प्लान ए का, लेकिन इम्पोर्टेंट
प्लान ए इज हाउ यू कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी.
और प्लान ए ये है कि हम कैसे समाज के तौर पर एकत्र आते हैं.
हाउ यू लव एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर.
और एक दूसरे का आदर करते, सम्मान करते, प्रेम करते हैं.
हाउ इन द मिडस्ट ऑफ योर टुगेदरनेस यू वर्शिप जीसस.
और ऐसे एकता में कैसे आप यीशु की आराधना करते हैं.
As we draw others in,
और जैसे हम दूसरों को भी शामिल करते हैं.
As we build this local church,
और जैसे हम इस स्थानीय कलीसिया को बनाते हैं.
In order we can reach the nations,
और ताकि हम देशों तक पहुंच सके.
So that we can plant more churches,
ताकि हम और कलीसिया बो सके.
From Mumbai to Montreal, wherever,
और मुंबई से मॉन्ट्रियल तक.
This is Plan A,
और यह परमेश्वर का योजना ए है.
Jesus is coming back for a glorified church.
और यीशु आ रहा है कलीसिया को महिमा देने के लिए.
And what God's plans are being worked out through us.
और परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा वो फलवंत हो रही है.
Through communities like us.
और हमारे जैसे समाज के द्वारा.
Sometimes I feel we don't look very strong.
और कभी कभी हमें लगता है कि हम मजबूत है.
I sometimes stand in front of my own church.
और कभी कभी मेरे कलीसिया के सामने मैं खड़ा रहता हूँ.
I'm aware of my own weaknesses and failings.
और मुझे जानकारी है मेरे कमजोरी की.
And because I'm one of the leaders of the church, I look out on a 200 or so people.
और मैं सारे वो 200 के करीब लोग हैं उनके ऊपर देखता हूँ.
I'm aware of a lot of their failings as well.
और उनकी जो कमी है वो भी मैं जानता हूँ.
And I think, really, Jesus?
और sorry.
Really? This is it?
और यीशु यही है क्या?
This is plan A.
और यह योजना ए है क्या?
But it is plan A.
लेकिन हाँ यही योजना ए पहली
योजना
है.
We are what Jesus is doing. Jesus is building his church.
और यीशु अपनी कलीसिया को बना रहा है.
He's building it in Mumbai. He's building it in Cape Town. He's building it in London. He is building his church.
और वो बना रहा है मुंबई में, वो बना रहा है केप टाउन में, वो बना रहा है इंग्लैंड में, वो कलीसिया बना रहा है.
And we may not be what we will be.
और हम शायद मजबूत नहीं है, लेकिन हम जरूर होंगे.
But we are what God has called us to be.
लेकिन हम वो कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है.
We're his sons and daughters.
हम उसके बेटे और बेटियां हैं.
We're his co-workers in changing the world.
हम उसके साथ सहकर्मी हैं दुनिया को बदलने के लिए.
So don't give up on the church.
तो कलीसिया को हार मत मानो या छोड़ो नहीं.
You can't do church on the television, okay?
हम टेलीविजन पर कलीसिया कलीसिया नहीं कर सकते हैं.
You can't do church on the internet.
और इंटरनेट में हम कलीसिया नहीं कर सकते हैं.
You need other people to do church.
और हमें कलीसिया करने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत है.
And whether you like it or not, I'm in there.
और आपको पसंद हो या नहीं, मैं उसमें हूँ.
That's the truth.
और ये सच्चाई है.
We need to build the church.
और हमें कलीसिया को बनाना है.
I don't know all of you by any means.
और आपके नाम से मैं हर एक को तो नहीं जानता.
A committed member of this church?
क्या आप सदस्य हैं कलीसिया के?
Or you just come on a Sunday?
या आप बस रविवार को आते हैं?
Where are you?
आप कहाँ पर हैं?
Maybe you come on Sunday and you give money. That's good.
और आप रविवार को आते हैं, आप दान भी देते हैं, वो अच्छा है.
Let's be honest. We want your money.
हाँ, मैं आपको बताऊँ सच में, हाँ पैसा की ज़रूरत है, पैसा चाहिए.
I want you to give more and more money. Give it away.
चाहता हूँ कि आप और दे दो, और दे दो.
Maybe you do that. But I want to know if you're committed to this church.
लेकिन मुझे ये जानना है कि आप इस कलीसिया से वचनबद्ध हैं या नहीं.
Not just with a few hours on a Sunday, not just with your money, but with your lives.
और सिर्फ आपके पैसों से या खाली रविवार को आने से सीमित नहीं, बल्कि क्या आपके जीवन के साथ आप वचनबद्ध हैं?
This unfinished story will get finished.
और यह जो अधूरी कहानियां हैं वो तब पूरी होगी.
As we do the things that we're called to do.
और वो तब होगी जब हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है.
If you're not a member of the church.
Sorry.
If you're not a member of the church.
अगर आप कलीसिया के सदस्य नहीं हैं.
Either join this one or join another one.
या आप इसमें जुड़ जाओ या और कहीं जुड़ जाओ.
Don't put it off.
लेकिन इस बात को भूलो नहीं.
It's not my idea.
यह मेरी आइडिया नहीं है.
It's Jesus' idea.
ये यीशु की आइडिया है.
Get joined into a community somewhere.
और समाज में जुड़ जाओ, कलीसिया से जुड़ जाओ.
Thirdly.
और तीसरी बात.
We find as we go through the Acts of the Apostles.
और हम जैसे प्रेरितों के उन कामों में देखते हैं, जाते हैं आगे.
The work of the Holy Spirit is vital.
और पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही अहम है.
As I've already said, Jesus says to those early disciples, wait in Jerusalem until the Holy Spirit comes upon you.
और जैसे यीशु चेलों को बताता है कि जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम यहीं से नहीं जाना.
It's the last thing he says to them.
और वो आखिरी बात है जो अपने चेलों को यीशु बताता
है. With him for 3 years.
और यीशु के साथ चेले 3 साल थे.
And they still need the Holy Spirit.
और उनको अभी भी पवित्र आत्मा का आवश्यकता है.
If they need the Holy Spirit, we need the Holy Spirit.
और उन्हें जरूरत थी, हमें जरूरत है.
In fact, so important is it.
और इतना महत्वपूर्ण है ये.
That Jesus says, don't do anything at all. Until the Holy Spirit has come upon you.
और यीशु इस तरीके से उन्हें बताता है कि जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम कुछ भी नहीं करो.
Don't go preaching, don't do anything.
और प्रचार ना करो, और कुछ ना करो.
Wait for the Spirit.
और अंत पवित्र आत्मा के लिए रुके रहो.
Because the work that He's got for them to do.
और वो वचन, वो पवित्र आत्मा उनके लिए देना ही है.
Requires the power of the Holy Spirit.
और उनके लिए वो सामर्थ्य चाहिए पवित्र आत्मा का.
There's a story in Acts chapter 8.
और प्रेरितों के 8वें अध्याय में वहाँ एक कहानी है.
When the believers are scattered and Philip goes to Samaria.
और विश्वासी है वो यहाँ वहाँ तितर बितर होते हैं और फिलिपुस वहाँ जाता है.
And when he goes there, he preaches. There are signs and wonders.
और फिलिपुस वहाँ जाता है, सुसमाचार बांटता है, चिन्ह चमत्कार को देखता है.
People get saved.
लोग उद्धार पाते हैं.
And Luke records, he says there was great joy in that city.
और लूक ने लिखा है कि वहाँ पर बहुत आनंद था वहाँ पर उस देश में.
Because of all the things that had gone on. Because of all the things.
और जो चीजें वहाँ पर हो रही थी उसकी वजह से शहर में आनंद हो गया है.
And when the news of what's happened in Samaria reaches Jerusalem.
और समरिया में क्या हो रहा है जब वो पता चलता है यरूशलेम में.
Peter and John are sent.
और वहाँ
Peter and John are sent.
पतरस और यूहन्ना वहाँ पर भेजे जाते हैं.
Because
क्योंकि
the Holy Spirit hadn't come upon them.
क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर अभी तक नहीं आया है.
So people are being saved, they're being healed, they're being delivered.
और लोग आनंदित हैं और चंगाई चमत्कार चिन्ह हो रहे हैं.
But because the Holy Spirit hasn't been poured out.
और क्योंकि पवित्र आत्मा अभी उंडेला नहीं गया है.
Peter and John make a special journey.
और पत्रस और यूहन्ना एक विशेष यात्रा पर निकलते हैं.
To pray for people to be filled with the Holy Spirit.
ताकि वहां पर लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं.
Are you filled with the Spirit?
क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं?
Have you been filled and are you going on being filled?
क्या आप भरे हैं और आप लगातार भरते रहते हैं?
We need the Holy Spirit.
हमें पवित्र आत्मा आवश्यक है.
To do the work of witnesses, of being witnesses to Jesus, we need the Holy Spirit.
और यीशु का गवाह बनने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए हमें पवित्र आत्मा का जरूरी है.
We need power.
हमें सामर्थ्य चाहिए.
To do the things that God has called us to.
और जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है, वो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए.
Number four.
चौथी बात.
Miracles, healings, and deliverance display the kingdom.
और चिन्ह चमत्कार चंगाई यह परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं.
You cannot read the Acts of the Apostles.
और आप प्रेरितों के काम को इस तरीके से
without being amazed at the kinds of things that are going on.
और अचंभित होने के सिवाय आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं.
We're told at one point.
और एक जगह में हमें बताया है
that God was doing extraordinary miracles.
और एक जगह में इसे बताया कि परमेश्वर बहुत बड़े कार्य कर रहा था
by the hands of Paul.
और पौलुस के हाथों के द्वारा.
So that even handkerchiefs or aprons.
और वहाँ पर रुमाल हो या कपड़े हो.
That's what we did this morning, remember?
और वही बात हमने इस सुबह की. हाँ या नहीं?
We live in days where I don't see many miracles.
और हम ऐसे दिनों में रह रहे जहां हम ज्यादा चमत्कार नहीं देख पा रहे.
So I'll tell you what we'll do then.
लेकिन हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊं.
We'll get hold of a pen.
और हमारे जगह से
a pen. We'll get a pen. We'll take a pen.
एक पेन ले लो.
And in our Bibles.
हमारे बाइबल में.
Wherever we find any miracles.
और जहां कहीं हमें चमत्कार दिखाई देता है या चंगाई.
Or deliverance. We'll rub them out. We'll scratch them out. Okay.
और हम उसको
because
अधोरेखित करेंगे वहां मार्किंग करेंगे.
They're not happening now. So we'll take them out of our Bibles because clearly there's something wrong here.
और no? वो वहां पर तो हुए हैं लेकिन अब नहीं हो रहे तो कुछ गलत है.
They're a bit of an embarrassment to us, aren't they?
और हमारे लिए वो एक प्रकार से नाखुशी की बात है.
We have to live with this truth.
हमें इस सच्चाई को लेकर जीना है.
That there are times in the history of the church.
और कलीसिया के इतिहास में ऐसी बातें होती
हैं. When there are many miracles happening.
और जब बहुत सारे चमत्कार कलीसिया में होते हैं.
And sometimes when there aren't many.
और कभी-कभी वहाँ पर ज्यादा नहीं होते.
My personally, I don't believe it's through lack of faith. I don't think it's through lack of faith.
और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि वो क्योंकि हमारे पास विश्वास की कमी है इसलिए ऐसा है वो सच नहीं है.
I was listening this morning to the story of a man called George Whitfield.
और जॉर्ज व्हिटफील्ड की कहानी मैं आज सुबह सुन रहा था.
He was an extraordinary man.
और काफी महान व्यक्ति था परमेश्वर का.
He lived 300 years ago.
और 300 साल पहले वो जिया.
He was a great preacher.
और बड़ा प्रचारक था.
It was said of him that some weeks.
और उसके बारे में ऐसा लिखा था कि कुछ हफ्तों में.
He preached 60 hours worth of sermons.
और करीबन 60 घंटे उन्होंने प्रचार किया.
We've only just begun, my brothers and sisters.
और भाई और बहनों हमने अभी अभी शुरू किया है.
Why am I speaking about him?
क्यों मैं उनके बारे में बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ?
This was a man who saw thousands and thousands and thousands of people come into the kingdom.
और यह व्यक्ति है जिसने देखा है हजारों 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 की तादाद में लोग परमेश्वर के राज्य में आए.
He preached the gospel.
और उन्होंने सुसमाचार बांटा.
Thousands got saved.
और हजारों की तादाद में लोगों का उद्धार हुआ.
The miracles that he saw were salvations.
और चमत्कार हुए और लोगों ने उद्धार भी पाया.
It's amazing.
Sorry? और उद्धार ही उनके लिए चमत्कार था.
This is press pause for me. I love when I'm in, got an interpreter. I love it when there's an interpreter. Come.
और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे साथ कोई अनुवाद करने वाला है.
And there are people in the congregation who kind of know what he should be saying.
और आपके बीच में लोग हैं वो समझते हैं कि सही में क्या कहना है.
I'm not so keen when I'm in a place where no one knows what he should be saying. So you never know what he might be saying.
ऐसा भी समय आएगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या कह रहे हैं.
I've seen some healings. I've seen some miracles.
और मैंने कुछ ऐसे चमत्कारों को चंगाइयों को देखा है.
I was at a wedding once.
और एक बार मैं शादी के समय में था.
Many more people turned up to the wedding than we expected.
और बहुत सारे और लोग उनकी अपेक्षा थी शादी में आने की.
It's a bit like an African or an Indian wedding, I guess, where people just come, you know, they come from everywhere.
और जैसे भारत में या अफ्रीका में लोग बस आ जाते हैं शादी में.
But we'd catered for not enough people. It was the truth. There wasn't enough food there.
और हम सभी को खाना नहीं खिला पाए. बहुत सारे लोग थे और
खाना. The food was like on a table like this, and the people said, "What are we going to do?"
और खाना नहीं है और लोग कहने लगे, अभी क्या करेंगे हम?
There are twice as many people as we expected.
और तीन गुना लोग वहां पर उनके आने की अपेक्षा थी.
Just start serving the food. When it runs out,
और हमने कहा कि जब खाना बांटने का समय है आप बांटने को शुरू करो, जब खत्म होता है तब देखेंगे.
We'll send them to the shop that sells fish and chips.
और हम बाजू के दुकानों में उनको वेफर लाने के लिए भेज देंगे.
The food never ran out.
और खाना कभी खत्म नहीं हुआ. हर एक को खाना मिल गया.
I haven't seen much of that. I haven't seen any extraordinary miracles like
और बहुत ही ऐसा महान महान चमत्कार को शायद मैंने नहीं देखा है.
So what do we do then?
तो फिर हम क्या करें?
Do we stop praying?
तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें?
No, we don't stop praying.
नहीं, हम प्रार्थना करते रहते हैं.
There's a story in the Old Testament.
और पुराने नियम में एक कहानी है.
Of Jonathan and his servant.
और जोनाथन और उसका सेवक.
They're being faced by their enemies.
और शत्रु का वो सामना कर रहे हैं.
And Jonathan says to his servant, "Hey, let's go."
और योनाथन अपने सेवक को कहते हैं, चलो हम जाएंगे और ये फिलिस्तीनियों के उनको पार करके हम जाएंगे. और ये जो खतना रहित लोग हैं उनके पास उनको हम.
जोनाथन सेज दिस.
और योनाथन इस प्रकार से कहता है,
हु नोस,
क्यों, कौन जानता है.
द लॉर्ड मे वर्क फॉर अस.
और परमेश्वर शायद हमारे लिए काम करे.
लेट्स कीप प्रेइंग.
हमें प्रार्थना करते रहना है.
Who knows, the Lord may work for us.
क्या पता परमेश्वर हमारे साथ कार्य करेगा.
We need to pray for some miracle workers.
और कुछ चमत्कार होने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है.
See, my Bible says there are such people with gifts of working miracles.
और मेरे बाइबल में लिखा है कि चमत्कार करने वाले ऐसे भी लोग वहाँ पर हैं.
That means we don't all have the gift.
उसका मतलब हमारे सबके पास वो.
Pray for some miracle workers.
और हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में ऐसे कुछ चमत्कार करने वाले भी होंगे.
Because these things are a display of the kingdom.
क्योंकि ये जो बातें हैं वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली है.
It's a display of that time in eternity.
और वो अंत का समय जो आने वाला है उसका प्रदर्शन है.
No sickness.
वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी.
No disease, no sorrow,
no रोग नहीं होगा.
We display that as we see God move in supernatural power.
और जैसे हम परमेश्वर अलौकिकता में आगे बढ़ता है वह उसको हम देखेंगे.
Number five.
पांचवी बात.
The way that this gospel is taken out, the way local churches are planted.
और जैसे सुसमाचार यह कलीसियाओं में लिया जाता है और कलीसिया बोई जाती है.
The success of the gospel.
और सुसमाचार का जो यश है.
Is down to committed partnerships and teamwork.
और वो इसमें है कि हम उसमें सहभागी होंगे और समाज में रहेंगे.
Philip goes on his own.
और फिलिप जाता है.
But two people come and help him.
लेकिन दो लोग उसको आकर मदद करते हैं.
What we find consistently through the Acts of the Apostles.
और प्रेरितों के काम में हम जो लगातार बात को देखते हैं वो ये है.
Groups of men and women taking the gospel, planting churches.
और वहाँ पर समूह समूह में लोग जाते हैं, कलीसियाओं को बोते हैं.
And doing the work of the gospel.
और सुसमाचार का कार्य करते हैं.
That's what happens all of the time.
और हमेशा यह होते रहता है.
Read your Bible properly.
अगर आपका बाइबल आप ठीक से पढ़ेंगे तो.
It's not just the lone evangelist who goes.
और सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली सुसमाचार प्रचारक ही वहाँ जाएगा.
It's a team of people.
और लोगों का समूह है.
We love leadership. We love leadership.
और हमें अगुवाई पसंद
है. We had this conference this week to sharpen our leadership skills.
और हमने शार्पन के उस कॉन्फ्रेंस में अगुओं को तेज करने में समय बिताया.
But it's leadership.
लेकिन वो अगुवाई है, अगुवाई है.
Of committed, hardworking, gifted churches.
और वो जो मेहनत करने वाले, जो ऐसे मेहनत के कलीसिया है.
There's a point where Paul says, "Look, I've finished my work in this area."
और पौलुस इस प्रकार से कहता है, इस इलाके में मैंने मेरे काम को पूरा किया है.
There's nothing more for me to do there.
और मेरे लिए और कुछ करने का नहीं है.
Because what he meant was this.
क्योंकि वो इस बात को याद रखता है.
He'd left churches behind.
क्योंकि उसने कलीसियाओं को पीछे छोड़ा
है. Who would work to take the gospel to other places.
ताकि वो दूसरे जगहों में वह सुसमाचार को लेकर जाएंगे.
Who would partner together.
और वो साथ में मिलकर काम करेंगे.
To do the work of the gospel.
और सुसमाचार का कार्य करने के लिए.
One of the elements of growing churches.
और एक बात है जो बढ़ती हुई कलीसियाओं की है.
Let me put it, one of the important things about growing churches.
और एक महत्वपूर्ण बात जो बढ़ने वाली कलीसिया को लेकर है वो ये है.
It is the level of commitment.
और वो एक वचनबद्धता को लेकर है.
Of the church.
कलीसिया से वचनबद्धता.
And that means you.
उसका मतलब आप.
You.
और आप.
Your level of commitment.
और आपको वो वचनबद्धता दिखाना है.
Growing churches.
और बढ़ने वाली कलीसिया में.
Bigger and bigger and bigger.
और वो तब बड़े और बड़े और बड़े होंगे.
ग्रुप ऑफ पीपल
और लोगों के समूह
who are committed to take the gospel.
और वो जो वचनबद्ध है सुसमाचार को लेकर जाने के लिए.
We need to be committed.
और हमें वचनबद्ध होना है.
Join the church and be committed.
और कलीसिया से जुड़ो और उसमें वचनबद्ध हो जाओ.
Number six.
और छठी बात.
Following Jesus is a sacrifice.
और यीशु के पीछे चलना यह बलिदान है.
Anywhere you read in the scriptures, it includes sacrifice.
और आप कहीं पर भी शास्त्र में पढ़ो, उसके लिए बलिदान जरूरी है.
It's at the heart of what it means to be a follower of Jesus.
और वो उस बात के मध्य में है कि यीशु के पीछे चलना क्या है.
We have many stories of Paul and his team being beaten and imprisoned.
और पौलुस और उसके संगी हमने देखा है शास्त्र में कि बहुत उन्हें मारपीट किया गया, बहुत उनके साथ सताव हो गया.
And that's clearly a part of the cost.
और वो हमें वो कीमत चुकाना है.
But this tragic news, whatever it was, 10 days ago of the pastor in Ludhiana who was shot.
और एक बहुत ही दुखद घटना हमने सुनी लुधियाना में, 10 दिन के पहले एक पासवान को मारा गया.
Most of us won't have to give our lives for the gospel.
और ज्यादातर हम ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें अपना जान देना नहीं पड़ेगा.
But to follow Jesus properly.
लेकिन अगर हम यीशु के पीछे सही रीति से चले,
it will cost us our lives.
और हमारे जीवन की कीमत हमें देनी है.
Every bit of our lives.
और हमारे जीवन का हर एक भाग.
It's not just some.
और कुछ ही लोगों के लिए ऐसा नहीं है.
It's all of our lives.
और हमारे संपूर्ण जीवन के लिए है.
If we're going to fulfill these plans.
अगर हम ये जो योजनाएं हैं अगर उसको हम पूरा करना है.
If we're going to play our part in this unfinished story of God.
और ये जो अधूरी कहानी है उसको हमें पूरा करना है तो.
We must measure the cost.
हमें उस कीमत को जानना
and
है.
And be prepared to pay for it.
और हमें तैयार होना है कि हम उसे दे दें.
It's not a few hours.
और ये कुछ घंटे ऐसा नहीं
some
है
money.
और या कुछ पैसा ऐसा नहीं है.
We give into the offering.
हम ऑफरिंग में देते हैं उसको लेकर नहीं है.
God wants all your money.
और परमेश्वर को आपका वैसे देखे तो पूरा
see,
पैसा चाहिए.
How we spend what's left is important too.
और हम sorry.
How we spend what's left after we give is also important.
और हम जो हमारे पास बचा हुआ है उसका हम कैसा उपयोग करते हैं ये भी बहुत जरूरी है.
The money we put in offering is to glorify Jesus.
और पैसा जो हम दान पेटी में डालते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए.
Actually, how we spend the rest of it is to glorify Jesus as well.
और लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो भी जिसका इस्तेमाल हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना है.
He wants your family, he wants your house.
और उसको आपका परिवार चाहिए, आपका घर चाहिए.
Everything you've got, he wants all that we have.
और हमारे पास हर चीज जो है उसको चाहिए.
God wants everything you've got.
और परमेश्वर को हमारे पास जो भी है वो उसे चाहिए.
Whatever you've got is not yours.
और जो भी आपके पास है वो आपका नहीं है.
You're just stewards.
हम बस उसके भंडार करने वाले, संभालने वाले हैं.
Privileged enough to have a wife.
और sorry.
Are you privileged enough to have a wife?
और आपका सौभाग्य है कि आप शादीशुदा है, आपकी पत्नी है.
She's not yours.
और वो आपकी नहीं है.
She's not yours.
वो आपकी नहीं है.
She belongs to Jesus.
वो यीशु की है.
He's loaned her to you just for a short time.
और आपको थोड़े समय के लिए आपको उधार दे दिया है उसको.
You got kids.
आपके बच्चे हैं.
This little one.
और यह छोटा वाला.
This little one's not theirs.
और वो उनका नहीं है.
He belongs to Jesus.
वो यीशु का है.
He's given this. I was going to say him. He's given this child.
और यह बच्चा उन्हें दिया है.
To these two.
और ये दोनों को.
Just on loan. It's a loan. It's a loan.
और वो हाँ और वो उधार दिया है उनको.
You have libraries here, right? You know, have libraries, yeah.
यहाँ पर libraries.
This child has got a return date on it.
और उन्हें वो परमेश्वर को वापस.
It's when Jesus comes back.
और जब यीशु वापस आएगा तब.
Your wife's got a return date on it, you know that, eh?
और आखिरी दिन में उसे वापस लौटाना है, आप जानते हैं
ना? Husbands, make the most of your wives, eh? She's not always going to be yours.
और आपकी पत्नी हमेशा आपकी नहीं रहेगी.
When you get to eternity, she's not yours anymore.
और अनंत काल में जब आप जाएंगे तब वो आपकी नहीं होगी.
She might say hello to you now and again.
और वो आपको कहेगी हेलो फिर से.
There's a cost to following Jesus.
और यीशु के पीछे चलना उसकी कीमत चुकाना है.
That we have. And as you read through the Acts of the Apostles,
और हर चीज जो हमारे पास है, जैसे हम प्रेरितों के अध्याय में पढ़ते हैं,
you find that cost being written about all of the time.
और हम देखेंगे कि वहाँ हमें दिखाई देता है कि हर कीमत को हमें चुकाना है.
And then finally,
और अंत में,
this story,
और यह कहानी,
will be finished.
वो खत्म होगी.
It is going to come to an end, okay?
और वो अंत उसका होने वाला है.
In Acts chapter 1,
और प्रेरितों के पहले अध्याय
में, when Jesus has told them to wait for the Spirit,
और जब यीशु ने चेलों को कहा है आत्मा के लिए रुके रहो,
and the disciples are looking to the sky wondering what on earth is going to happen next,
और चेले जो है आकाश में देख रहे हैं अब क्या होने वाला है,
angels come down, angels come,
और स्वर्गदूत वहां आ जाते हैं,
and they say, men of Galilee, what are you looking up into the sky for? Why are you looking in the sky?
और हे गलील के लोगों आप आकाश में क्यों देख रहे हो?
They say this. This Jesus who was taken up into heaven,
और यह यीशु जो स्वर्ग में उठाया गया,
will come in the same way as you saw him go.
और वो उसी प्रकार से वापस लौटेगा जैसे तुमने जाते हुए उसे देखा है.
One day this is all going to be over.
और एक दिन यह सब खत्म होने वाला है.
You know one of the remarkable things about that.
लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है.
Is that in when Peter writes one of his letters?
और जब पत्रस एक अपना खत लिखता है.
He tells us.
और वो हमें बताता है.
That we can hasten the day.
तो हम जो है उस दिन के आने की जल्दबाजी कर सकते हैं.
He says we can live our lives in such a way.
और वो कहता है कि हम हमारा जीवन इस तरीके से जिएंगे.
Hasten the day of the Lord.
और परमेश्वर के आने के दिन को हम जल्दी देख सकते हैं.
That means that you and I can make decisions and choices.
इसका मतलब आप और हम निर्णय लेंगे, कुछ निश्चय करेंगे.
That will hasten the day of the Lord.
और वो आने वाला परमेश्वर का दिन जल्दी आएगा.
This story will be finished
और तब वो कहानी पूरी होगी.
But until it is,
और लेकिन तब तक,
let's work hard.
हम मेहनत करें.
To do the things that God has called.
और परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए बुलाया है उसके लिए हम मेहनत करें.
Amen.
Amen.
I want to offer to pray for people who haven't been baptized in the Spirit.
और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी नहीं पाया है.
We need the Spirit.
क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए.
So I want to pray for that. If you also feel maybe this is a if you feel that God's spoken to you about praying for the sick and seeing them healed.
अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है कि आप जाकर लोगों को मरीजों के लिए प्रार्थना करें और चंगा होते हुए देखें.
I want us to pray for you.
अगर आप ऐसे लोग हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ.
This is not a time for silly humility, okay?
और यह एक ऐसी दिखाने वाली दीनता के बारे में नहीं है.
If God has spoken to you,
अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है,
that you'll pray for the sick and see them healed,
और तुम चंगाई के लिए प्रार्थना करो और उनको चंगा होते हुए देखो.
If anybody's ever prophesied that over you,
अगर आपके ऊपर इस प्रकार का भविष्यवाणी अगर किसी ने किया है तब,
then I'm asking you to come forward.
तब मैं आपको आगे आने के लिए कह रहा हूँ.
So if that's you, if you feel like God has spoken to me about praying for the sick and seeing them healed,
और अगर आपको लगता है विशेष रूप से कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है मरीजों को चंगा करने के लिए,
you just come and stand this side, okay?
तब आप इस बाजू में आओ और यहाँ पर रुके रहो.
If you want to be baptized in the Spirit, particularly for the first time,
और अगर आपको पहली बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है तब,
then come stand this side, okay?
तो आप इस बाजू में रुके रहो. आइए हम सब साथ में खड़े हो जाएं.